यीशु ने पहाड़ पर किया हुआ उपदेश हम में से कईयों ने सुना है। उन परिचित शब्दों में उसने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है जो शांति के काम करते हैं, इत्यादि शब्द हम कई बार सुनते हैं। पहाड़ पर किया गया हुआ उपदेश मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में शामिल किए हैं। यीशु ने कहा है कि ऐसे कई विषय हैं जो साफ तरीके से बताते हैं कि परमेश्वर के नियमों का पालन ये सिर्फ कानून का संच नहीं है, लेकिन यह मनुष्य के हृदय और मन की बात है। मत्ती 7 में यीशु ने पहाड़ पर किए हुए उपदेश का शिखर है। यह शिखर 13वें और 14वें वचन में दिया है। इस उपदेश का शेष भाग इन्हीं दो वचनों का विस्तार है। आओ हम ये दो वचन पढ़ें। संकुचित फाटक से प्रवेश करो। यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि चौड़ा फाटक और बड़ा मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। बड़े मार्ग से जाना बहुत आसान है, बहुत से लोग इस मार्ग को स्वीकारते हैं। जीवन की ओर जाने वाले रास्ते का फाटक बहुत संकरा है और बहुत ही कठिन है, और बहुत ही कम लोगों ने उसे प्राप्त किया है। प्रभु ने किया हुआ यह बयान बहुत ही प्रेरक है। 5वें अध्याय के प्रारंभ में उन्होंने दिए हुए उपदेश के पहले भाग में इस पर जोर दिया है। पूरे उपदेश का शिखर उसमें लिखा है। 13 और 14 वचनों में दो मार्ग के बारे में कहा है कि ये दो मार्ग अलग अलग मंजिल की ओर जाते हैं। जो दो अलग प्रकार के लोग जिनकी मंजिलें अलग है, जो निर्णय हम टाल नहीं सकते, इसके बारे में उन्होंने पहले से ही पहाड़ पर दिए हुए उपदेश में केंद्रित किया है। किसी ने यथार्थ कहा है कि हर एक मनुष्य का जीवन चौराहों पर केंद्रित होता है। बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए जब हम परिपक्व होते हैं, तब से हमारा जीवन लगातार निर्णय लेने की बात हो जाती है। हर दिन हम निर्णय लेते हैं। जो समय हम मुकर्रर करते हैं, हम कब उठेंगे, कब भोजन करेंगे, हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, हम पूरी जिंदगी भर मार्ग चुनते हैं। यह कहना ठीक है कि मनुष्य का जीवन चौराहों को ही बात हुआ है। अंत में हम खुद को ही निर्णय लेना अनिवार्य है कि अनंत काल हम कहां बिताने वाले हैं। इस निर्णय के बारे में यीशु ने मत्ती 7:13 और 14 में स्पष्टता से कहा है। लोगों ने यह निर्णय लेने के लिए परमेश्वर ने हमेशा कोशिश की है। जहां पर हमेशा पर्याय है, वहां हमेशा निर्णय है। अंतिम निर्णय से परमेश्वर को मतलब है, और पूरे बाइबल में यह हमको दिखाई देता है। मूसा का उदाहरण। मूसा के जरिए परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को आह्वान दिया है। उसने इज़राइल लोगों को इजिप्त देश से बाहर निकाला। व्यवस्था विवरण के 30वें अध्याय में यहोवा कहते हैं, देखो मैंने आज जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद या शाप दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं, इसलिए तू और तेरी संतान जीवित रहने के लिए जीवन को चुन ले। यहोवा ने इसराइल लोगों के सामने एक आखिरी चुनाव दिया, जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई, इसमें से एक के लिए उनको निर्णय लेना था। यहोशु का उदाहरण। यहोशु के द्वारा इसराइल लोग वचन दत्त देश में आ गए। उनको परमेश्वर ने चुनने को कहा। या यहोवा की सेवा करना यह तुम्हें बुरा लगता होगा, तो जिसकी तुम सेवा कर रहे हो उसे तुम आज चुन लो। तुम्हारे पुरखों ने जिस परमेश्वर की सेवा की, उसकी या जिस देश में तुम रहते हो उनके देवताओं की। मैं और मेरा खानदान तो यहोवा की ही सेवा करेंगे। यिर्मयाह का उदाहरण। यहोवा ने भविष्यवादी यिर्मयाह से कहा, जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। एलिया का उदाहरण, जब एलिया कर्मेल पहाड़ पर था तब उसने इज़राइल लोगों से निर्णय लेने को कहा कि कब तक तुम दो विचारों के बीच अस्थिर रहोगे, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके मार्ग पर चलो और उसका अनुसरण करो, यदि बाल परमेश्वर है तो तुम्हें इसका अनुयायी होना चाहिए। यहां आखिरी निर्णय लेने की अपेक्षा है। यूहन्ना 6 अध्याय में हम देखते हैं कि बहुत लोग यीशु के पीछे गए और खुद को उनके शिष्य कहलाने लगे, लेकिन कई लोग पीछे मुड़ गए और फिर उसके पीछे कभी नहीं चले। 67 और 68 वचन में लिखा है, यीशु ने 12 शिष्यों से कहा कि क्या तुम भी मुझसे दूर चले जाना चाहते हो? तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएंगे? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। पतरस के यह शब्द उसका निर्णय दिखाई देते हैं। कुछ लोग यीशु से दूर निकल गए और कुछ लोग उसके पास रहे। हरेक के तकदीर का यीशु मसीह केंद्र है। यीशु यह चौरास्ते पर निर्णय लिया जाता है, जीवन या मौत चुन लो। निर्णय निश्चित है, इसमें सिर्फ दो चुनाव है, संकुचित मार्ग या चौड़ा मार्ग, इसमें और पर्याय नहीं है। यहां मुझे एक टिप्पणी जोड़ने दो, यह भेद धर्म और विधर्म में नहीं है। बहुत सारे लोगों की मत्ती 7:13 और 14 वचनों की गलत फहमी होती है। वे कहते हैं कि संकुचित मार्ग स्वर्ग जाने वाला ईसाई धर्म है और चौड़ा मार्ग नरक जाने वाला है, लेकिन यीशु ईसाई लोगों की तुलना में नरक में जाने वाले अनितिमान लोग ऐसा भेद नहीं कर रहा था। वह दो प्रकार के धर्मों का भेद बता रहा था। दोनों रास्तों के निशाने कहते हैं कि स्वर्ग जाने वाला रास्ता, शैतान ऐसा निशान नहीं लगाता कि जो कहता है नरक में जाने वाला रास्ता, नहीं तो वो ठगाना नहीं होगा। हम नीति और अनीति का भेद भी नहीं देख रहे हैं। हम तो परमेश्वर का मार्ग और मनुष्य का मार्ग, इसका भेद देख रहे हैं। मत्ती 7:13-14 में सच्चे देव प्रणीत धर्म और मानव रची झूठे धर्म की तुलना की है। उदाहरण, जो धर्म के नेता थे उनकी समस्या ये थी, वे हमें बहुत ही धर्मी हैं ऐसा खुद पर भरोसा रखते थे। उनका धर्म अधूरा था। हर एक व्यक्ति निर्णय लेता है, या तो हम मानते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम अपने आप ही अपनी धर्म प्रणाली की वजह से योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो हम जानते हैं कि हम स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हैं, और हम खुद को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की दया पर सौंप देते हैं। जगत में सिर्फ दो प्रकार की धर्म प्रणाली है। यीशु कह रहे थे ये दोनों रास्ते हैं जो स्वर्ग का जाने का ही इशारा देते हैं। एक संकुचित रास्ता है जो परमेश्वर की धार्मिकता का है, और दूसरा चौड़ा मार्ग मनुष्य की धार्मिकता का है। यहूदी धर्म गुरुओं ने ऐसा सिखाया कि अपने खुद के प्रयत्न से मनुष्य स्वर्ग की ओर जा सकता है, इसलिए उनको पौलुस का यह कहना सुनकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी परमेश्वर के सामने व्यवस्था के कर्मों से धर्मी नहीं बन पाते। पौलुस ने 19वें वचन में कहा, परमेश्वर का नियम शास्त्र कहता है कि हर एक का मुंह बंद हो जाए और समस्त जगत परमेश्वर के सामने दंड के लायक हो। परमेश्वर का कानून मनुष्य को पाप दिखाता है, आज्ञा पालन करने से उसको छुटकारा नहीं देता, लेकिन अपने आप को धर्मी समझने वाले स्वकेंद्रित मनुष्य ने देखा कि कानून के प्रमाण से वह खुद पापी है, तो वह अपनी दुष्टता से मुकाबला करना नहीं चाहते थे। इसके बदले उसने परमेश्वर के कानून को बाजू में रख दिए और खुद की गलतियां मान्य होने के लिए नए कानून की प्रणाली बनाई और खुद को नीतिमान समझ गए। उनकी धार्मिकता मनुष्य के प्रयत्न पर आधारित थी, लेकिन प्रभु के पहाड़ पर के उपदेश का इरादा मनुष्य की यह प्रणाली तोड़ने का था। उसने दिखाया कि मनुष्य के प्रयत्न कुछ कार्य नहीं कर सकते, कामयाब नहीं होते। इस समय के धार्मिक नेता यह संदेशा नहीं समझ पाए। लूका 18 में एक धार्मिक नेता की प्रार्थना देखो। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे लोगों जैसा डाकू, ठग और व्यभिचारी नहीं हूं और न ही इस कर वसूलने वाले जैसा हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी समूची आय का 10वां भाग दान देता हूं। एक बार भी उसने खुद को परमेश्वर की जरूरत नहीं बताई। खुद को कुछ जरूरत है यह भी वह नहीं मानता था। वह तो खुद को नीतिमान समझता था, परंतु उसके नजदीक एक आदमी छाती पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा, यह आदमी धर्मी ठहरा कर गया, वो धर्म का नेता नहीं। यीशु के इस बयान से इंसान ने यह बात मान लेना चाहिए कि अपनी खुद की कर्मों से वह परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। मनुष्य ने निराश होकर फूटे हुए दिल से परमेश्वर के पास नीतिमत्व के लिए रोना चाहिए, जो नीतिमत्व सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त होता है। यहूदी नेताओं का भरोसा था कि वे स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन यीशु ने उनको दोबारा सोचकर निर्णय लेने को कहा। हरेक को यह निर्णय लेना ही पड़ता है। मत्ती 7:13-14 में यह निर्णय स्पष्ट होता है। 2 फाटक है, एक संकुचित दूसरा चौड़ा। 2 मंजिलें हैं, एक विनाश की दूसरी जीवन की ओर। 2 प्रकार के प्रवासी हैं, थोड़े और बहुत। मत्ती 7 के अतिरिक्त वचनों में और ऐसे ही भेद बताए गए हैं। मत्ती 7 वचन 16 से लेकर 20 में 2 पेड़ों की तुलना की है, एक अच्छा और दूसरा बुरा। मत्ती 7:24-27 इन वचनों में 2 मकान बनाने वालों की तुलना की है, एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख। 2 नींव है, एक चट्टान पर और दूसरी रेती पर। 2 घर है और तूफान के 2 घटक हैं। जब हम पहाड़ पर के उपदेश के शिखर पर आते हैं तो हमें एक स्पष्ट निर्णय लेना है और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपनी आचार शास्त्र की प्रणाली की तारीफ की जाए, ऐसा यीशु को कभी महसूस नहीं हुआ। जो जरूरत है वो लगाने में, उसका अवलंब करने में लोगों ने देरी नहीं करनी चाहिए, ऐसी उसकी इच्छा है। वह हमें निर्णय लेने को मजबूर करता है। मत्ती 7:13-14 में जो 4 प्रकार के भेद दिए गए हैं वह मैं अब तुमको दिखाना चाहता हूं। ये 2 वचनों पर हम अभी सोचेंगे। 2 फाटक। संकुचित फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि 14 फाटक विनाश की ओर ले जाता है। वचन 14 में लिखा है, कितना संकरा है वह फाटक और सीमित है वो राह जो जीवन की ओर जाती है। इसमें संकुचित फाटक के बारे में 2 बार और 14 फाटक के बारे में 1 ही बार विवेचन किया है। वह 2 फाटक है। दोनों रास्ते परमेश्वर और मुक्ति की ओर जाने का निर्देश कर रहे हैं। दोनों परमेश्वर का राज्य, गौरव और आशीर्वाद दर्शाते हैं। दोनों दरवाजे स्वर्ग का निशाना लगाते हैं, लेकिन सिर्फ 1 ही रास्ता वहां जाता है। 1 रास्ता अपनी खुद की धार्मिकता का मार्ग है, दूसरा परमेश्वर की धार्मिकता का रास्ता है। इसमें से किसी भी रास्ते पर जाने से पहले हमको फाटक से अंदर जाना चाहिए। मत्ती 7:13-14 वचन समझने के लिए संकुचित फाटक क्या है यह समझना आवश्यक है। इसलिए उस पर विचार केंद्रित करके मैं उसमें आने वाली कल्पना का विस्तार करना चाहता हूं। एक, तुम निश्चित अंदर जाओ, तुमने अंदर जाना आवश्यक है। 13वें वचन में यीशु ने कहा कि संकुचित फाटक से अंदर जाओ। इस वचन में जल्द करने की संकल्पना है, अभी की अभी कृति क्रिया करनी है। उसने कहा अभी अंदर जाओ, अंदर जाने का समय अभी है, इसलिए परमेश्वर बुला रहा है। यह तुमने करना जरूरी है, इसमें पर्याय नहीं है, यह आज्ञा है। प्रभु अपना सुनने वाले लोगों को संकरा रास्ते के बारे में सिखा रहे थे। उन लोगों का जीवन पाप बर्दाश्त करने वाला था। परमेश्वर के कानून के अलावा उन्होंने हर प्रकार के कानून और प्रमाण बनाए थे। उन्होंने एक मानव रचित प्रणाली खोज ली थी। इसके बदले यीशु ने उनको बताया, तुम्हारी रीति प्रणाली तुमको छोड़नी ही पड़ेगी, यही रास्ता है। मनुष्य ने बिताने का मार्ग उसने संकुचित कर दिया। इस प्रकार जब वह मत्ती 7:12 तक आ गया, तब परमेश्वर के गौरव के लिए जीने का निश्चित मार्ग उसने पेश किया। 7वें अध्याय के आखिरी में लिखा है, यीशु उनको अधिकारी के नाई उपदेश देता था। यीशु ने सिर्फ धार्मिक शिक्षकों की शिक्षा फिर से बयान की नहीं, परमेश्वर के कानूनों को निश्चित रूप से बयान किया। उनकी प्रणाली के साथ तुलना करते तो यीशु का रास्ता संकुचित था। उसने कहा कि यदि उनको राज्य में जाना है तो उनको संकरे मार्ग से ही प्रवेश करना पड़ेगा। इसमें अभी के अभी क्रिया या कृति करने की जरूरत है। यहां कोई पर्याय ना देते यीशु निश्चित स्वरूप में आज्ञा देता है। फाटक के बारे में उपदेश सुनना और उसकी रीति को सिर्फ अच्छा कहना काफी नहीं है, तुम फाटक से अंदर जाना जरूरी है। यीशु ने कहा, उसने बताई हुई शर्त मानकर ही तुम राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अपनी खुद की धार्मिकता तुम छोड़ दो। हृदय से दीन 5:3, पाप के लिए शोक करते हुए 4, पवित्र परमेश्वर के सामने नम्र होकर 5, नीतिमत्ता के प्रति भूखे और प्यासे होकर उन्होंने आना चाहिए। उसकी शर्त पर ही अंदर जाना चाहिए। पहाड़ पर का उपदेश सुनकर उसकी प्रशंसा करने वाले बहुत से लोगों से नर्क भरा हुआ होगा। तुम्हें फाटक से अंदर जाना है। संकुचित फाटक से अंदर जाओ, यीशु ने कहा। वहां चौड़ा फाटक है लेकिन उससे अंदर जाओ ऐसा इसने नहीं कहा, क्योंकि वह विनाश की ओर जाता है। यदि आप राज्य में होगे तो तुमको संकुचित फाटक से ही जाना पड़ेगा। इतना ही मत समझो कि कितना अच्छा है यह सुझाव। राज्य में जाने वाला फाटक संकुचित है। कभी लोग कहते हैं, ईसाई धर्म में तो दूसरे कोई मार्ग से मुक्ति मिलाने के लिए कुछ भी जगह नहीं है। ठीक है यह कहना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईसाई लोग खुदगर्जी यानी स्वार्थी या अहमवादी है। यह हमारा सुझाव नहीं है, यह तो बाइबल का स्पष्ट कहना है। परमेश्वर सिर्फ उनके तरीके से की गई हुई बातें ही मान लेते हैं। यदि परमेश्वर ने मुक्ति के लिए 48 मार्ग दिए होते तो मैं तुम्हें वो 48 मार्ग सिखाता, लेकिन हमको बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। प्रेरित 4:12 में लिखा है, यीशु के बिना किसी भी दूसरे में उद्धार नहीं है, क्योंकि इस आकाश के नीचे लोगों में कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो पाए। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंचता। 1 तिमोथी 2:5 कहता है, परमेश्वर एक ही है और मनुष्य तथा परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ भी एक ही है, यीशु मसीह। यीशु मसीह यह एक ही मुक्ति का रास्ता है। रास्ता संकरा है, इसमें कोई पर्याय नहीं है। इच्छा और विश्वास के साथ तुम इसके अंदर जाना चाहिए। परमेश्वर ने बताए हुए फाटक से और उसी के शर्त पे ही हम अंदर जा सकते हैं। यीशु मसीह यह फाटक है, यूहन्ना 10:9। सिर्फ वो ही रास्ता है। उद्धार कैसा हो, यह स्थापित करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर का बनता है, और उसने यह स्थापित किया है कि यह सिर्फ मसीह के द्वारा हो। 3, संकुचित फाटक से तुम अकेले खुद ही अंदर जाना है। इन वचनों में तुम अकेले ही अंदर जाना है, यह सत्य सूचित होता है। 13 और 14 वचन में आया हुआ संकुचित, यह शब्द दिखाता है कि फाटक बहुत ही संकुचित है, संकरा है। बाइबल पंडितों के अनुसार यह दरवाजा चक्रद्वार जैसा है। चक्रद्वार से कोई भी व्यक्ति को अकेले ही जाना पड़ता है। चक्रद्वार से अंदर जाने का मार्ग बहुत संकरा होता है। उसके लोहे की हाथ से एक बार एक से अधिक आदमी अंदर जा नहीं पाते। यदि एक समुदाय एक ही वक्त जल्दी से अंदर जाना या बाहर आना चाहते हैं, तो वे एक साथ उसमें से नहीं जा पाते। उनको एक एक को ही जाना पड़ेगा। उसी प्रकार संकुचित फाटक का है। यीशु मसीह के राज्य में लोग समुदाय साथ में नहीं जा पाते। यहूदियों की राय से वे सब इब्राहिम के वंशज यानी औलाद थे, इसलिए स्वर्ग को जाने वाले रास्ते पे वे एक साथ जा रहे थे। ऐसे कई लोग हैं, उनको लगता है कि वे निस्संदेह निश्चय झुंड में स्वर्ग जाएंगे, लेकिन झुंड चक्रद्वार से स्वर्ग नहीं जा सकता। लोगों को एक एक करके ही स्वर्ग जाना पड़ेगा। मुक्ति सिर्फ एक एक को ही प्राप्त हो सकती है। स्वर्ग में कोई जोड़ा साथ में प्रवेश नहीं कर सका। कभी एक व्यक्ति का विश्वास दूसरी व्यक्ति के विश्वास के लिए प्रभावी हो सकता है, फिर भी मुक्ति एक एक व्यक्ति को ही मिलती है। यह हमारे लिए मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हम हमेशा झुंड के साथ बर्ताव करते हैं। दूसरे लोग जो करते हैं वो ही हम करते हैं, और एक समुदाय के या प्रणाली के सदस्य होते हैं। यीशु ने कहने का मतलब है कि मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम खुद को ही निर्णय लेना चाहिए। कुछ लोगों को इसके लिए अपने मित्र परिवार को विदाई देना पड़ेगा और उनके धर्म की कानून की प्रणाली छोड़ देनी होगी। यहूदियों को वे इब्राहिम के वंशज है यह काफी नहीं है। या कोई कहे, मैंने ईसाई घर में जन्म लिया है और जिंदगी भर में गिरजाघर में जाता था, यह भी काफी नहीं है। लोग राज्य में झुंड के साथ नहीं जा सकते, वे अकेले खुद विश्वास रख के आ सकते हैं। तुमने संकुचित फाटक से प्रवेश करना ही चाहिए, और वह अकेले ही करना है। संकुचित फाटक से प्रवेश करना मुश्किल है, यह सुनकर हमें धक्का लगता है, क्योंकि मुक्ति मिलना आसान बात है, ऐसा हम हमेशा सुनते हैं। कोई लोग कहते हैं, बस तुमको इतना ही करना पड़ेगा, सिर्फ विश्वास रखो, कार्ड साइन करो, मंदिर में आगे जाओ, हाथ ऊपर उठाओ, नहीं तो प्रार्थना के कमरे में जाओ। लेकिन समस्या यह है कि यह सब करने के बाद हमको मुक्ति मिल गई, ऐसा लोग समझ पाते हैं, लेकिन सच में वो उचित मार्ग पर नहीं है। वे संकुचित फाटक से अंदर नहीं गए। मुक्ति मिलना मुश्किल बात है। अब इसकी वजह हम समझ लेंगे। मत्ती 7:14 के आखिरी भाग में संकुचित फाटक और संकरे मार्ग के बारे में बताया है। बहुत थोड़े से हैं जो उसे पा रहे हैं। इसका मतलब लोगों को संकेरा मार्ग समझ में नहीं आएगा जब तक वो उसे ढूंढते नहीं। परमेश्वर ने पुराने नियम के एक नबी के जरिए कहा, तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, लेकिन जब तुम मुझे सच्चे दिल से ढूंढोगे तभी। पैर फिसल कर कोई परमेश्वर के राज्य में गिर नहीं गया। मुक्ति मिलना आसान नहीं है। बाइबल कहती है बहुत थोड़े से हैं जो उसे पा रहे हैं। संकरा मार्ग तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। लूका के 13वें अध्याय में देखो और तुम्हें जो दिखाऊंगा वह देखकर तुम्हें धक्का मालूम पड़ेगा। 22वें वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु जब नगरों और गांवों से हुआ उपदेश देता यरूशलेम जा रहा था। 23वें वचन से हमें मालूम पड़ता है कि यीशु के साथ जो लोग थे उनको मालूम पड़ा कि हर एक आदमी उसकी शिक्षा को प्रतिसाद नहीं दे रहा था। किसी एक ने उसे पूछा, प्रभु जी क्या थोड़े से व्यक्तियों का उद्धार होगा? जिसने यह प्रश्न पूछा उसने देखा कि मसीह को बहुत लोग जवाब यानी प्रतिसाद नहीं दे रहे थे। यीशु ने इसका जो जवाब दिया उससे हम समझते हैं कि थोड़े ही लोग मुक्ति क्यों पाते हैं। इसने कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने को हर संभव प्रयत्न करो। वचन 24। हर संभव प्रयत्न या कोशिश का अर्थ है गहरा दर्द लेना। खिलाड़ी जीतने के लिए जो गहरा दर्द लेता है उसके लिए भी यह शब्द प्रयोग करते हैं। जोश से परिश्रम करना और लड़ाई करना, यह भी कल्पना उसमें है। दूसरे शब्दों में प्रभु कहते हैं संकुचित फाटक से जाने में गहरा दर्द है, उसके लिए अथक परिश्रम करना जरूरी है। आगे लूका 13:24 में कहा है, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं कि भीतर जाने का प्रयत्न बहुत से करेंगे पर जा नहीं पाएंगे। उद्धार पाना मुश्किल होने के लिए दो कारण हैं। एक, तुम्हें संकेरा मार्ग ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, यदि तुम ढूंढते भी होगे लेकिन उसकी कीमत समझने के बाद अंदर जाने की इच्छा तुमसे होनी चाहिए। चर्च में सबके सामने आगे जाने से तुम ईसाई नहीं बन पाते। आसानी से और सस्ते तरीके से तुम मुक्ति नहीं पा सकते। बाइबल कहती है स्वर्ग का राज्य भयानक आघातों को झेलता रहता है और हिंसा के बल पर इसे छीनने का प्रयत्न किया जाता है। जो सच्ची लगने से प्रभु के राज्य में प्रवेश करता चाहते हैं वे ही अंदर जाते हैं। प्रभु ने कहा, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचारित किया जा रहा है और हर कोई बड़ी तीव्रता से उसकी ओर खींचा चला जा रहा है। यह हम इन दिनों में नहीं सुनते, लेकिन यीशु ने लोगों को यही सिखाया। जो पूरे दिल से उस राज्य को ढूंढते हैं उनका ही राज्य है। जो गहरे दर्द से अंदर जाने की कोशिश करते हैं उनके लिए राज्य है। जो नम्र बनकर रोते हैं, जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे होते हैं, परमेश्वर से उनके जीवन का परिवर्तन हो ऐसी गहरी इच्छा जिनकी है उनके लिए परमेश्वर का राज्य है। जो लोग सस्ते तरीके से आते हैं, जिनको अपने जीवन न बदलते ईसा को पाने की इच्छा है, उनके लिए राज्य नहीं है। हम आपसे परमेश्वर के राज्य में हमको नहीं पा सकते। इसके लिए हमको बहुत परिश्रम और अथक प्रयत्न करना पड़ेगा। यीशु कहता है कि जगत में तुम्हें यातना मिलेगी। ईसाई होना आसान बात नहीं है। शैतान और उसके पिशाच तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से तुम उस पर और शरीर पर जय पाना चाहिए ताकि हम राज्य में आ सके। आज शैतान की एक बहुत बड़ी झूठ है कि ईसाई बनना आसान बात है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम खुद को संकुचित फाटक से अंदर जाना है और तुम्हारे पापीपन के लिए गहरा दर्द लेना है। तुमको तुम्हारी आत्मा में टूटना पड़ेगा, भग्न होना पड़ेगा। कोई कहेगा, यह तो आपने पहले बताए हुए मनुष्य के संपादन का, यश का धर्म लग रहा है। जी नहीं, जब तुम अपने आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, यह जब समझते हैं और टूट हुए दिल से, भग्न आत्मा से उसके पास आते हैं, तो प्रभु यीशु तुम पर उसके अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह उंडेल देता है, ताकि संकुचित फाटक से जाने के लिए आपको शक्ति मिले। तुम्हारे टूटेपन में उसकी शक्ति तुम्हारा साधन बनती है। संकुचित फाटक से सब बोझ छोड़कर ही अंदर जा सकते हैं। तुमने यह जाना होगा कि बहुत सा बोझ लेकर तुम चक्र द्वार से अंदर नहीं जा सकते, यह असंभव है। संकुचित फाटक यह खुद को इनकार करने का फाटक है। जो सुपरस्टार्स है वह अपना कचरा लेकर उसमें से अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी खुद की सब धार्मिकता और पाप छोड़ना चाहिए, नहीं तो तुम अंदर जा नहीं पाओगे। मत्ती 19 में एक रईस आदमी फाटक तक आया। उसने यीशु से कहा, गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या अच्छा काम करना चाहिए? यीशु ने उसकी हृदय की समस्या में जाकर कहा, यदि तुम संपूर्ण बनना चाहते हो तो जा और जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर धन गरीबों में बांट दे। यीशु ने उस अमीर युवक के ज्यादा बोझ पर ही चोट लगाई। यह आदमी अपनी धन दौलत के साथ संकुचित फाटक से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास अपने धर्मीपन का वो भी बोझ था, क्योंकि उसने प्रभु से कहा कि मैंने सब आज्ञाओं का पालन किया है। अपना धन और धार्मिकता के साथ वह अमीर युवक उस संकुचित फाटक से अंदर नहीं जा पाया और वह दुखी होकर वहां से निकल पड़ा। खुद का इनकार करने को और अपने पाप के लिए गहरा दर्द मानने को वह तैयार नहीं था। अपना बोझ उसने उतार नहीं दिया। संकुचित फाटक से जैसा जाना चाहिए उस तरह आप नहीं गए, तो आप गलत रास्ते से जा रहे हो। चाहे वह रास्ता तुम्हें स्वर्ग की ओर या यीशु के पास ले जाने का वायदा करे, अंदर जाने के लिए अपना स्व छोड़ देना चाहिए। मत्ती 18:3 में प्रभु ने कहा, जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान नहीं बन जाओगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। छोटे बच्चों में क्या गुण होते हैं? वे तो दूसरे पर निर्भय होते हैं। जो निर्भरता कहती है कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, लूका 18:13। मत्ती 7:13-14 में आसान विश्वास रखने के धोखे प्रभु दिखा रहा है। कुछ लोग कहते हैं, यीशु के पास आओ, यह तो बहुत आसान बात है, सिर्फ विश्वास रखो और प्रार्थना करो। विश्वास रखने में और प्रार्थना करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बातें जब रिक्तपन में यानी कि खोखलेपन में होती है तो वे तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकती। तुम पापी हो और परमेश्वर के सामने जाने के लिए योग्य नहीं है, यह कठिन और मूलगामी बात मानना यह मुक्ति पाने में आवश्यक बात है। संकुचित फाटक में पश्चाताप यानी मन फिराव के साथ अंदर जाना चाहिए। तुम्हारे हृदय में पाप के लिए पश्चाताप यानी मन फिराव नहीं होता, तब तक तुम संकुचित फाटक से अंदर जा नहीं सकते। जिंदे परमेश्वर की सेवा करने के लिए तुम्हें अपने पाप से फिरना चाहिए। बापतिस्मा करने वाला यूहन्ना जब लोगों को मसीह का स्वीकार करने के लिए पुकार रहा था, तो बहुत से लोग बपतिस्मा लेने आए क्योंकि वे अपने पापों की क्षमा होना चाहते थे। यहूदी लोगों को मालूम था कि मसीहा के लिए तैयारी करना यानी अपने पापी हृदय शुद्ध करना, तुम्हारे पाप से दूर होना जरूरी है, नहीं तो तुम और परमेश्वर एक साथ नहीं आ सकते, तुम तुम्हारा एक भी पाप नहीं रख सकते, सब पाप पूरी तौर पर त्याग करना चाहिए, उनको तुम छिपा नहीं सकते, वे सब खुले में लाना जरूरी है, तुम अपने पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है, तुम्हारे हृदय में मन फिराव की जरूरत है, संपूर्ण आत्मसमर्पण करके ही तुम संकुचित फाटक से अंदर जा सकते हैं। यीशु मसीह के लिए सब का पूरा त्याग करके ही तुम संकुचित फाटक से अंदर जाना है। यीशु को तुम्हारे जीवन की क्रियाओं को जोड़कर तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति यानी तुम्हारे जीवन में कुछ जोड़ना नहीं, वो तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन है। बाइबल कहती है कि अगर तुम सच्ची तरह मुक्ति पा गए तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। तुम अपने पापों को कबूल करोगे, आज्ञा पालन यह तुम्हारे जीवन का गुण बनेगा और तुमसे प्रेम दिखाई देगा। मुक्ति का निशाना है परिवर्तित जीवन। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो सचमुच तुम मेरे शिष्य हैं। अगर तुम कहते हो कि तुम ईसाई हो लेकिन तुम्हारे जीवन में आज्ञा पालन का चिन्ह नहीं है तो तुम गलत मार्ग पर हो। चौड़ा फाटक। चौड़े फाटक के बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यह तो स्पष्ट है कि वो संकुचित फाटक से बिल्कुल विरुद्ध है। हर एक व्यक्ति चौड़े फाटक से एक साथ अंदर जा सकते हैं। उनको एक एक करके जाने की जरूरत नहीं है, उसमें व्यक्तिवाचक कुछ भी नहीं है, खुद का इनकार करने की अपेक्षा नहीं है। जो चाहिए वो बोझ तुम साथ में ले सकते हो, जैसे कि तुम्हारी अनैतिकता, मन फिराव का अभाव और यीशु मसीह के समर्पण का अभाव। चौड़ा फाटक खुद के विलास के लिए है। ऐसे बहुत लोग हैं जो खुद को ईसाई कहलाते हैं, वो सिर्फ अपनी तुष्टि करते रहते हैं। गर्व, स्वधार्मिकता, खुद की तुष्टि और हर तरह के पापों का चौड़े रास्ते में स्वागत है। यदि ये चीजें तुम्हारी जीवन में हो तो आप संकरे मार्ग में नहीं हैं, क्योंकि बोझ के साथ तुम संकुचित फाटक से अंदर नहीं जा सकते। दो मार्ग। ये दो मार्ग कौन से हैं? मत्ती 7:13 वचन चौड़े मार्ग के बारे में और वचन 14 मुश्किलों या कठिनाइयों के मार्ग के बारे में कहता है। एक मार्ग धर्मी लोगों का है, दूसरा अधर्मी लोगों का है। बाइबल कहती है कि अधर्मियों के साथ चलने का आखिर यानी परिणाम है मृत्यु। चुनाव पहले से जो है वो ही है। चाहिए तो आप धार्मिक रास्ते से जा सकते हैं, नहीं तो अधार्मिकता के रास्ते से। चौड़ा रास्ता। जब तुम चौड़े फाटक से आते हैं तो जीवन आसान है। वहां घूमने के लिए बहुत जगह है। वहां पर कोई कायदे कानून नहीं है, कौन से भी नीति का बंधन नहीं है। हर तरह के विश्वास को वहां जगह है। कल्पना में जो कुछ सोचे वो आप वहां चल सकता है। जब तक आप अपने साथीदारों से प्यार करते हैं या खुद धर्मी हैं, कोई भी बंधन नहीं है। रास्ते पे तुम्हारी सब मनोकामना पूरी होगी। परमेश्वर के वचन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। खुद का आंतरिक नैतिक प्रमाण होने की वहां जरूरत नहीं है। यंत्र जैसी यानी यांत्रिक धार्मिकता तुम जी सकते हैं, जो तो ढोंग से ज्यादा नहीं है। इस भले बड़े मार्ग पर तुमको अच्छा चरित्र होने की जरूरत नहीं है। मरी हुई मछली की तरह तुम पानी के प्रवाह के साथ तैर सकते हैं। जो कि प्रवाह अपना कार्य करे। बाइबल इस प्रवाह को संसार की रीति कहती है। यह चौड़े रास्ते के दुखद कहानी का सारांश है। मनुष्य को एक मार्ग अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत मृत्यु है। चौड़े मार्ग के लिए कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ इंसान ने बनाए हुए जो उसकी अनुकूल प्रणाली में बैठ जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है, अधर्मी का मार्ग नष्ट हो जाएगा। संकेरा मार्ग कठिनाइयों का यह संकेरा मार्ग वचन 14 में बताया है। इसके लिए अच्छा शब्द है सिकोड़ा हुआ मार्ग। यह मार्ग खड़ी चट्टान का संकुचित पगडंडी का है। दोनों बाजू परमेश्वर का शुद्ध करने वाला हाथ है। पगडंडी से इस ओर या उस ओर तुम बाहर गए तो आत्मिक तौर पे तुमको फटका मिल जाएगा। आपसे जो चाह है वह बड़ी है, कड़ी है और स्पष्ट है। यहां वहां विचलित होने को जगह नहीं है। यह चाह पूरी करने की इच्छा तुम्हारे मन में होने की जरूरी है और यह समझना चाहिए कि यदि तुमसे गलती होगी तो परमेश्वर तुमको अनुशासन करेगा, प्यार से क्षमा करेगा और फिर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगा। तुम कहोगे, मार्ग सच में मुश्किल और संकेरा होगा तो मुझे यह मार्ग नहीं चाहिए। अद्भुत बात यह है कि संकेरे मार्ग से जाते वक्त तुम्हारा मन परमेश्वर सच्चे आनंद से भर देता है और हमारे चलने की सब कठिनाइयां यीशु मसीह ने खुद सुलझाई, ये ले ली है। यीशु ने कहा, वह जुआ जो मैं तुम्हें दे रहा हूं बहुत सरल है और बोझ जो मैं तुम पर डाल रहा हूं हल्का है। लेकिन यदि आप संकेरे मार्ग से जाने का निर्णय लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है यह समझ लो। लूका के पुस्तक में लिखा है, यीशु के साथ अपार जन समुदाय जा रहा था। वह उसकी तरफ मुड़ा और बोला, यदि मेरे पास कोई भी आता है और अपने पिता माता पत्नी और बच्चे अपने भाई और बहनों और यहां तक कि अपने जीवन तक से मुझसे अधिक प्रेम रखता है वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यीशु कह रहा था, तुमको मेरा शिष्य बनने के लिए समुदाय से बाहर निकलकर अपने प्रियजनों को विदाई देना पड़ेगा, फिर तुम अपना क्रूस उठाकर सूली पर जीवन बिताना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश आज किया तो कितने लोग मसीह को स्वीकारने को आगे आएंगे? वो सिर्फ उसके पीछे आएंगे जो उसके लिए उचित समर्पण करने के लिए तैयार है। यीशु ने कुछ उदाहरण देकर अपने विचार आगे पेश किए। उसने कहा, यदि तुमसे कोई बुर्ज बनाना चाहे तो क्या वह पहले बैठकर उसके मूल्य का यह देखने के लिए कि उसको पूरा करने के लिए उसके पास काफी कुछ है या नहीं हिसाब किताब नहीं लगाएगा? इसका मतलब कुछ बांधने के पहले खर्चों का विचार करके ही काम को प्रारंभ करें। यीशु ने और कहा, या कोई राजा ऐसा होगा जो किसी दूसरे राजा के विरोध में युद्ध छेड़ने जाए और पहले बैठकर यह विचार न करे कि अपने 10,000 सैनिकों के साथ क्या वह 20,000 सैनिकों वाले अपने विरोधी का सामना कर भी सकेगा या नहीं। फिर उसने कहा, तुम में से जो अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु ने एक कड़ी बात आगे रखी, यदि तुम सब बातों को ना कहकर उस संकेरे मार्ग से जाने का निश्चय नहीं करते तो तुम यीशु का चेला नहीं बन पाओगे। यदि तुम वह संकेरा मार्ग चलते हो तो एक बात ध्यान में रखो कि परमेश्वर ही यह काम करने को मदद करता है। परमेश्वर तुम्हारा जीवन बदल देगा, वह तुमको नया हृदय देगा। तुम खुद ही वह संकेरे मार्ग से नहीं जा पाओगे। लेकिन परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह पर अनुग्रह देगा और तुम्हारी दुर्बलता में वे तुम्हें शक्ति उंडेल देगा ताकि तुम यह कर सकोगे। यदि तुम ईश्वर की इच्छा के अनुसार बर्ताव करना चाहते हो तो तुम उचित रास्ते से उसके पास आ रहे हो। लेकिन ध्यान में रखो कि तुम्हें तंग किया जाएगा और घोर क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। उसने अपनी शिष्यों से कहा कि ऐसा समय आ रहा है कि जो कोई तुम्हें मारेगा वो समझेगा कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। यह संकेरा रास्ता नंगे पैर से पार नहीं कर सकते। ईसाई होना यह कमजोर दिल वालों के लिए आसान पर्याय है, ऐसा यीशु ने कभी नहीं दिखाया। जब तुम संकेरे मार्ग से अंदर जाते हैं तो तुम नर्क के साथ युद्ध पुकारते हैं और नर्क तुमसे मुकाबला करेगा। अपना गर्व और स्वार्थ की इच्छा को तुमको हरदम सामना देना पड़ेगा। यीशु पतरस को जो कह रहे थे उसका अर्थ है, मेरे पीछे आ, पर उसके लिए तुम्हें तुम्हारी जान की कीमत देनी पड़ेगी। क्या तुम यीशु के पीछे यही शर्त पर आ रहे हो? संकेरा मार्ग तो ऐसा ही होगा। वो बहुत मुश्किल से भरा है, मर्यादित है। अगर तुम इस मार्ग में भटक गए तो परमेश्वर तुमको अनुशासन देगा। आप कह सकते हो कि यह तो मुश्किल लग रहा है। जी नहीं, क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ चल रहा है और वह तुम्हें हर समय मदद कर रहा है। दो मंजिले। मत्ती 7 के अनुसार चौड़ा मार्ग विनाश की ओर और संकेरा मार्ग जीवन की ओर ले जाता है। मूसा, यहोशी, यिर्मयाह और एलिया ने इन सब ने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग इसके बारे में कहा है। बाइबल कहती है कि जो धर्मी है वे आशीष पाएंगे और अधर्मी विनाश पाएंगे। जब बाइबल विनाश के बारे में कहती है तो उसका मतलब अंतिम अंत, नरक में होने वाला सार्वकालिक न्याय। प्रभु ने कहा हर एक व्यक्ति इन दोनों में से एक जगह में खुद को पाएगा। संसार के सब धर्म जो यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर ने दिखाए हुए मार्ग से ना जाकर अपने मार्ग से जाते हैं, उनका अंत एक ही स्थान में, विनाश में ही होता है। जो रास्ता वहां जाता है इस पे चलना आसान बात है। तुमको जो चाहे वो तुम साथ में ले सकते हो, वहां कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जब तुम मार्ग के अंतिम छोर पर पहुंचते हो तब वह मार्ग खुरदुरा होता है। वहां कोई बंधन नहीं है। बहुत से लोग तुम्हारे साथ है लेकिन उसका आखिर नरक में होता है। कोई लोगों को जब समझेगा कि वो नरक की ओर जा रहे हैं तो उनको झटका लगेगा। संकेरा मार्ग तो सार्वकालिक आनंद में खुला हो जाएगा, चौड़ा दरवाजा संकुचित होकर एक विनाश के भयानक गड्ढे में ले जाता है। लेकिन संकेरा मार्ग अनंत जीवन की तरफ, परमेश्वर के साथ अनंत काल की सहभागिता की पूर्ति में खुला होता है। अनंत जीवन का मतलब इतना ही नहीं कि वो कितना लंबा है, लेकिन वो कितना महान है, यह भी उसमें है। निर्णय तुम्हारा है। जो मंजिल आप चुनोगे वहां तुम अनंत काल बिताओगे। 4, दो लोक समुदाय। मत्ती 7:13 कहता है, बड़ा मार्ग तो विनाश की ओर ले जाता है, बहुत से लोग हैं जो उस पर चल रहे हैं, और संकेरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। बहुत से लोग अपने अच्छे कर्म करने का मार्ग चुनते हैं जो गलत है। लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कहां ज्यादा लोग होंगे, स्वर्ग में या नरक में। यीशु ने उसका जवाब मत्ती 7:13 और 14 में दिया है। बाइबल के अनुसार ऐसा वक्त आएगा कि हर एक राष्ट्र के, देश के अलग अलग भाषा बोलने वाले असंख्य लोग छुटकारा पाएंगे। छुटकारा पाने वालों में इज़राइल देश के लोग भी होंगे। सुसमाचार के ओर बहुत लोग मुड़ जाएंगे, मसीह की तरफ बहुत भारी मन फिराव होगा। लेकिन अब मसीह की तरफ लोग नहीं मुड़ते, क्योंकि उनको अपने पाप पकड़कर रखना ज्यादा पसंद है। यीशु ने कहा, लोगों को अंधियारा पसंद है, उनको पाप और अवज्ञा प्यारे हैं। संकेरे मार्ग का छोटा समुदाय, बहुत थोड़े लोग अपने हृदय से स्वर्ग के राज्य में जाने का मार्ग ढूंढते हैं। बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग में अंदर जाने का अपना असमर्थपन देखकर दर्द से दुख मनाते हैं और संकेरे मार्ग चलने के लिए कीमत देने को तैयार होते हैं। मत्ती 22:14 कहता है, बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े से हैं। चौड़े मार्ग का बड़ा समुदाय, चौड़े मार्ग में जाना बहुत आसान है, सिर्फ समुदाय के साथ जाना। तुम सब के साथ यीशु को भी तुम्हारे जीवन में जोड़ दो। खुद को धर्मी समझो, मंदिर में जाओ, स्वर्ग की ओर निशाना करने वाली कोई भी प्रणाली को अपनाओ जिसमें अपने को ना कहने की जरूरत नहीं होती। ऐसी किसी ही तरह से तुम अपना विनाश कर पाओगे। लूक 13:24 में यीशु कहता है, संकेरे फाटक से प्रवेश करने का हर संभव प्रयत्न करो। भीतर जाने का प्रयत्न बहुत करेंगे पर जा नहीं पाएंगे। यह बात यीशु अधर्मी लोगों के बारे में नहीं कह रहा था। वह धार्मिक लोग जो उचित मार्ग से जा रहे हैं ऐसा मानते हैं, उनके बारे में कहता है। मैं यह सोच नहीं सकता कि वो दृश्य कितना भयानक होगा कि जो लोग मान रहे हैं कि वो विश्वास रखते हैं लेकिन स्वर्ग का द्वार उनके लिए बंद होगा। यीशु ने कहा, बहुत से लोग चौड़े रास्ते से जाएंगे। मत्ती 7:22-23 वचन में लिखा है, उस दिन बहुत से मुझसे पूछेंगे, प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने दुष्टात्माएं नहीं निकाली? और क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे कुकर्मियों, यहां से दूर हो जाओ। चौड़े रास्ते में होने वाले लोग ढूंढ पाएंगे कि वे स्वर्ग की रास्ते में नहीं थे। स्वर्ग का दरवाजा उनको हमेशा के लिए बंद होगा। स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता संकेरा है, लेकिन सबसे बड़ा पापी अंदर लेने के लिए वह काफी बड़ा है। परमेश्वर का प्रेम जो यीशु के अर्पण के द्वारा किया है वह इतना बड़ा है कि एक भयानक पापी जो पश्चाताप करके यीशु के पीछे जाता है तो उसके पापों का वह क्षमा करते हैं। तुमको संकुचित फाटक से ही अकेले अंदर जाना पड़ेगा। यह चुनाव तुम टाल नहीं सकते। तुमको निर्णय लेना ही होगा। अगर तुमने निर्णय नहीं लिया हो तो वही है तुम्हारा चुनाव, और उस निर्णय का तुम्हें मुकाबला यानी कि सामना देना होगा। तुमने कभी आत्मपरीक्षण किया है? क्या निस्संशय परमेश्वर की शर्त के अनुसार आप स्वर्ग में जा रहे हो? पहाड़ पर के उपदेश के आरंभ में मत्ती 5 में यीशु ने ये शर्तें पेश की है। आत्मा से दीन, आध्यात्मिक रूप से हम खोखले हैं और अपने आप स्वर्ग जाने को असहाय है यह मानना। जो अपने पाप के लिए दुखी है, जो लीन है यानी सहनशील और अधीन है, जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे हैं, क्या ये चार गुण तुम्हारे जीवन में हैं? क्या तुम यह सचमुच बता सकते हो कि जब से तुमने यीशु को अपना तारणहारा स्वीकार कर दिया तब से तुम्हारा जीवन बदल गया? अगर नहीं तो तुम वो संकुचित फाटक से अंदर नहीं गए जिसका मार्ग तुम्हें स्वर्ग पहुंचाता है। अपने पाप परमेश्वर के सामने अभी कबूल करो और यीशु के नाम से जो नीतिमत्ता तुम्हारे लिए उपलब्ध है वो परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर को तुम अपने जीवन का नियंत्रण दे दो और उसकी सब आज्ञाओं का पालन करो। यदि तुम उस संकुचित फाटक से अंदर आए हो तो परमेश्वर का एहसान मानो, इसलिए कि उसने तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया है।